ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बंदरगाहों और परिवहन के विविध संसाधनों के विकास तथा बैटरी जैसे डिजिटल मंचों के साथ भारत आधुनिक समुद्री क्रांति की ओर बढ़ रहा है। कल नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC सम्मेलन 2025 में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा वैश्विक संपर्क के मामले में बाजी पलटने वाला है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक और सुरक्षित व्यापार मार्गों के साथ ये गलियारा भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच संपर्क मजबूत कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में एक कौशल प्रशिक्षण मंच की स्थापना का आह्वान किया। इससे विश्व की विशिष्ट कुशल जनशक्ति आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस गलियारे में कुशल जनशक्ति प्रदान करके अपने युवा जनसंख्या के लाभांश को अधिकतम कर सकता है।
इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज के है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें उसको कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब कंट्री के साथ हमारा रिश्ता इस कॉरिडोर से और सुदृढ़ होगा, तो उसके साथ हम हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फायदा ले सकते हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बढ़ता हुआ बाजार है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ओमान तथा कुछ और देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री बिरला ने कल नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां आज उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई कर रखी है। शीर्ष अदालत इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई करेगी। न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हों या वक्फ बाय डीड हों। न्यायालय ने कहा है कि वो संशोधन अधिनियम के वक्फ संबंधी प्रावधान को भी प्रभावी नहीं होने देगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड मामले में निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर ऋषिकेश में श्री वैष्णव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया कि ये मामला प्रवर्तन निदेशालय के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक लेनदेन का स्पष्ट उदाहरण है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2025 और 2026 के लिए व्यापार अनुमान जारी किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क के कारण इस वर्ष विश्व व्यापार घटने की आशंका है। WTO की महानिदेशक एनकोहसी ओकोहन जो ई वाई ला ने कहा कि चीन और अमेरिका का व्यापार तनाव बेहद चिंताजनक है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों का स्कोर बराबर होने के बाद IPL 2025 में यह पहला मैच रहा जिसका फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने केवल 11 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।